सर्गादियो यस्य नुरुणादिशक्तिभि
नमस्कार
परस्मै
दिव्य
पुरुषाय
पुरुषाय
भगवान
को
वेद
से
समस्त
कारणों के कारण
हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, इनके नियामक देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं।
अपनी शक्ति से
आप इस संपूर्ण दृश्य जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। आपकी ही
शक्ति से
प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है और कभी प्रकट नहीं होती। अतः आप समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान है।
मैं आपको
सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य बाइस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री शिल प्रभुपाद की। सभी कार्य पूर्ण शक्ति अर्थात महत्तत्व की उत्पत्ति के साथ प्रारंभ होते हैं, तब तीन गुणों के क्षोभ से भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। मन, अहंकार तथा इंद्रियों के नियामक भी तभी उत्पन्न होते हैं। ये सब एक एक करके भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रसूत होते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिकी में एक बटन दबाने से क्रियाओं की श्रृंखला चालू हो जाती है, जिससे एक के बाद एक अनेक कार्य संपन्न हो। इसी प्रकार भगवान उत्पत्ति का बटन दबाते तो विभिन्न शक्तियां तत्वों को तथा उनके विभिन्न नियामकों को उत्पन्न करती और बाद में अन्योन्य क्रियाओं से भगवान की अकल्पनीय योजना बन जाती है। शिल प्रभुपाद की। ओम अज्ञान अधिगमस्य ज्ञानाञ्जनशाला क्या सुनना चाहते हैं भक्त लोग? तो जवाब है मैंने पूछा क्या सुनना चाहते हो, तो जो तात्पर्य हो बता के उसमें से क्या सुनना चाहते हो? अब जो श्लोक किया है और तात्पर्य क्या, पहले वो करके फिर कुछ और कर सकते, पहले इसमें से क्या सुनना चाहते हैं पहले वो करेंगे, फिर वो हो जाएगा तो फिर और बाकी के किसी भी शास्त्र में से एक एक करके भगवान की अलग अलग शक्तियां, वो तो पहले बता गया मैं यहां, हाँ शुरू से शुरू कर लेते हैं। सभी कार्य संपूर्ण शक्ति अर्थात महत्तत्व की उत्पत्ति के साथ प्रारंभ होते हैं। श्री प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं कि जैसे कोई इलेक्ट्रिकल मशीन या इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगी हुई है, एक बटन दबाया तो वो ये करती है फिर वो करती है। फिर आजकल हमारे मंदिरों में और ज्यादातर जहां फूड फॉर लाइफ होता है या मिड डे मील प्रोग्राम होता है, बच्चों को स्कूल जाता है भोजन वगैरह, तो वहां रोटी बनाने की भी ऐसे ही मशीन लगी हुई है। उसमें आटा डाल दो, पानी का कनेक्शन है, आटा डालना पड़ेगा, खाली बटन दबाना है, तो वो आटा पहले गूंदेगी मशीन, फिर उसका वो बना के गूंदा हुआ आटा फिर वो उसको मशीन में रोल कर देगी, तो इतनी लंबी रोटी, बहुत लंबी, इतनी चौड़ी निकलती जाएगी, फिर उसमें से वो गोल गोल काटेगी, तो वो गोल गोल रोटी अलग हो गई, जो बाकी का बचा वो दूसरी तरफ जाके फिर उसके अंदर आटा वापस आ जाएगा, उसको फिर से वो ठीक करके फिर से रोल कर देगी, और रोल करके रोटी उधर जाके तवे पे गिरेगी, तवा वो अपने टेम्परेचर पे सेट है, तो दो मिनट के बाद वो उसको ऐसे पलट देगा तो वो दूसरे तवे पे दूसरी तरफ की रोटी, और वो फिर फूल भी जाएगी और निकल के दूसरी तरफ से बाहर। तो ये तो खाली रोटी बनाने का है, ऐसे बहुत बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मशीनें लगी हुई हैं, जैसे कि जहां मैं रहता हूं अमेरिका में, कनाडा में, तो मशीन जाती है गाजर तोड़ने के लिए, तो उसके अंदर गत्ते फिक्स कर देते हैं, वो जाके गाजर को उखाड़ती है, उसका ग्रीन पत्ता जो है काट के उसको अलग करके एक तरफ कर लेती है, फिर उसको धोती है, फिर उसको गत्ते का डब्बा बना के उसके अंदर, तो वो अपने आप से 50 पाउंड या समझ लो 25 किलो गाजर का डब्बा बना बना के खुद ही तोड़ के साफ करके सब कुछ करके डब्बे में पैक करके 50-50 किलो के डब्बे बना के वो मशीन घूम फिर के वापस आ जाती है। ऐसे ही गेहूं तोड़ने की भी है, वो उसको एक बार भेज दो तो वो काट के नहीं लाती है गेहूं, वहीं पे उसका गेहूं निकाल के सब कुछ बोरियों में भर भर के वो ले आएगी वापस। उसमें एक एडिशन और लगा दो तो वो आटा भी वहीं बना लाएगी, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है क्योंकि वहां गेहूं इतना होता है कि जो लोकल लोग हैं 20 साल में भी उतना गेहूं खा नहीं सकते जितना हर साल होता, तो उसका आटा बनाने से तो जल्दी खराब हो जाएगा, तो इसलिए उसको गेहूं का गेहूं ही रखते हैं। आटा तो थोड़े से का बनता है, बाकी दूसरे देशों में चला जाता है। तो ऐसे ही या महातत्व के बारे में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में धरती माता जिनके ऊपर प्रथु महाराज ने बाण खींच दिया है, वो डर के मारे सहमी हुई, काफी हुई और एक गऊ के रूप में वहां प्रकट हुई। वो गऊ के रूप में इसलिए प्रकट हुई है कि मेरे ऊपर दया हो जाएगी, गऊ के रूप में जाऊंगी, राजा है, क्षत्रिय हैं, मेरे ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। और प्रथु महाराज क्या कह रहे हैं, अच्छा तू गऊ का रूप धर के आई है इसलिए कि मैं तेरे ऊपर बाण नहीं चला लेकिन क्यों सारा अन्न अपने गर्भ में छुपा के रखा है, दो बाहर निकालो। तो जब खूब डांट लिया पृथ्वी माता को प्रथु महाराज ने, तो अब पृथ्वी माता पिछले 29वें श्लोक से बोल रही हैं, जवाब दे रही हैं, और जवाब देना तो उनका अगले चैप्टर में शुरू होगा 18वें में, लेकिन 17वें चैप्टर के एंड तक तो वो अभी केवल गुणगान कर रही भगवान का, केवल भगवान का गुणगान। तो ये एक एक श्लोक में अलग अलग तरह से भगवान का गुणगान पृथ्वी माता कर रही है। ये वाला श्लोक जो हमने आज लिया है उसमें भगवान का गुणगान वो एक तरह से कहा जा सकता है कि समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान का गुणगान कर रही है। क्योंकि ये सारा संसार जो जिसको हम भौतिक संसार कहते हैं, भौतिक जगत, ये सब कर्णदक्षाय विष्णु से आया है और कर्णदक्षाय विष्णु भगवान से ही आए या भगवान ही है। तो इस श्लोक में उस रूप का बखान कर रहे भगवान के। तो सबसे पहली चीज आती है इसमें महत्तत्व। सब भक्तों को महत्तत्व समझ में आता है, यहां महत्तत्व क्या होता है? नहीं आता। कितनों को आता है महत्तत्व? कितने भक्तों को समझ में आता है कि महत्तत्व क्या है? कभी नाम किसने सुना है पहले महत्तत्व का? लगभग सबने सुना है नाम, लेकिन समझ में कभी आया? कभी नहीं आया। तो पहले उसका इलाज कर लेते हैं। श्रील प्रभुपाद ने महत्तत्व को श्रीमद् भागवतम में अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह से महत्तत्व को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो श्रील प्रभुपाद का कहना है कि भगवत गीता को अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ के उसके बाद हमें भागवतम पे जाना चाहिए। तो जिन चीजों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन श्रील प्रभुपाद पहले ही भगवत गीता में कर चुके हैं, ऐसी कुछ चीजों को उन्होंने भागवतम में उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो अगर हम यहां पे उसको मिस कर देते हैं या पूरी तरह से नहीं समझ पाते, इसका मतलब ये नहीं कि हमने भगवदगीता नहीं पढ़ी, पढ़ी है, लेकिन फिर भी अगर कोई एस्पेक्ट पूरी तरह से समझ में नहीं आया भगवदगीता में और वो मिस हो गया, तो वो भागवतम तक हम आगे पहुंच गए तो वो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता। तो शुरू से सबसे पहले भगवदगीता में 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में भगवान बताना शुरू करते हैं इस संसार की उत्पत्ति के बारे में, जिस उत्पत्ति की बात यहां हो रही है, यहां पे महत तत्व और उत्पत्ति चलो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन नहीं करी, जबकि अनुवाद में है, क्योंकि वो पहले भगवद गीता में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सातवें अध्याय के चौथे श्लोक में भूमिरापा भूमिरापो अनलो वायु कनम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिष्ठता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये आठ प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना या अपरा प्रकृतियां हैं। एक होती है अपरा प्रकृति और एक होती है परा प्रकृति। दोनों में अंतर क्या है? हाथ ऊपर करना है।
अपरा होती है भौतिक होती है, आध्यात्मिक।
परा आध्यात्मिक और अपरा भौतिक। और कोई? और कोई उत्तर?
उत्कृष्ट और निकृष्ट।
उत्कृष्ट और निकृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब? उत्कृष्ट का मतलब हायर। निकृष्ट लो। तो अगर जो हम इस तरीके से समझें, जैसा माता जी ने बताया कि जो आध्यात्मिक है वो पारा और जो भौतिक है वो अपरा, तो फिर हम कहां जाएंगे? मीनिंग जो बीच के हैं, ना आध्यात्मिक ना भौतिक, हम कौन सी? परा है या अपरा है? तटस्थ। तो तटस्थ अपरा है या परा है? बीच में। एक्सप्लेनेशन तो अच्छा है, लेकिन ये वो वाला है के स्कूल कहाँ है? स्कूल आगे लाइब्रेरी के सामने है। लाइब्रेरी कहाँ है? वो स्कूल के सामने है। दोनों कहाँ है? वो हमारे सामने है। ये वो क्योंकि परा का अर्थ आध्यात्मिक नहीं होता और अपरा का अर्थ भौतिक नहीं होता। परा का अर्थ होता है जैसे प्रभु जी ने बताया हाय उत्कृष्ट, अपरा का अर्थ होता है। तो जब हम दो कोई दो की बात करते हैं तो अगर हम आध्यात्मिक और तटस्थ की बात कर रहे हैं तो परा आध्यात्मिक अपरा तटस्थ, और अगर तटस्थ और भौतिक की बात कर रहे हैं तो भौतिक अपरा तटस्था परा। आ गया समझ? सबको समझ में आ गया? मतलब है हायर या लोअर। तो तीन है, उसमें से हायर कौन सी और लोअर कौन सी है? जिन दो की हम बात कर रहे हैं उसमें से जो हायर है वो परा, जो लोअर है वो अपरा। तो अपरा तटस्थ को भी कहा जा सकता है और भौतिक को भी कहा जा सकता है, और परा आध्यात्मिक को तो कहा ही जा सकता है, लेकिन तटस्थ को भी परा कहा जा सकता है क्योंकि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं भौतिक से। तो ये उनका संबंध अपरा और परा। तो यहां हम आए थे महत्त्व को समझने के लिए। चलो प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें कि सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश, स्वांश इज पार्ट एंड पार्सल अपना अंश, तीन विष्णुओं का रूप धारण करता। हम भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल, लेकिन हम स्वांश हैं, विभिन्नांश। तो जब भगवान का रूप विष्णु रूप में या उनके रूप में प्रकट हो तो उसको स्वांश कहते हैं। हम भी उनके अंश हैं, लेकिन हम विभिन्न अंश हैं। विभिन्न अंश का मतलब हम कभी पूरी तरह से अपना व्यक्तिगत स्वरूप छोड़ के भगवान में हमेशा के लिए मर्ज नहीं हो सकते। किसी को होना था यहां? हम अपना निजी व्यक्तिगत स्वरूप को त्याग करके किसी भी हालत में कभी भी भगवान के अंदर विलीन नहीं हो सकते, क्योंकि हम विभिन्न अंश। विभिन्न अंश मतलब जिसको अलग कर दिया गया और उसके पास अपना व्यक्तिगत स्वरूप हो गया। स्वांश कभी भी जाके भगवान में विलीन होके खत्म हो सकते, हम नहीं। तो ये स्वांश तीन विष्णु के रूप धारण करते हैं। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तो अभी हम ये सब चीज में नहीं जाएंगे, केवल महत्त्व में ही रुकेंगे। महत्त्व यहां पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं, वो है महाविष्णु। आगे नौवें अध्याय के आठवें श्लोक में फिर से भगवान महत्त्व की तरफ इशारा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद महत्त्व को एक्सप्लेन करते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे ये माटी है, सब कुछ माटी से ही आता है, इंक्लूडिंग हमारे शरीर माटी से ही आए। सारा भोजन जो कुछ भी हम खाते हैं सब माटी से ही आता है। और वापस कहां जाता है? सब तो जिस तरह से खाने पीने के पदार्थ, हर तरीके की घास, साग सब्जी, अनाज, दाल, चावल, सब कुछ माटी से उत्पन्न होके। क्यों होता है माटी से उत्पन्न? क्योंकि हम माटी में वो बीज डालते हैं। जिस चीज का बीज हम माटी में डालेंगे वो चीज माटी में से उत्पन्न होगी, बिना माटी के नहीं। तो जब वो उत्पन्न होती है तो उसका लाइफ साइकिल का जो एंड है वो उसी माटी में वापस जाके विलीन होता है। किसी भी तरीके से उसके अंदर से धान होगा, खाया गया तो भी माटी में जाएगा, और नहीं खाया गया तो भी वो वापस माटी में जाएगा। उसको जीव खाएगा तो भी माटी में जाएगा, मीनिंग उसको कोई मनुष्य खाएगा तो भी वो माटी में जाएगा, कोई पक्षी खाएगा तो भी वापस माटी में, वही जानवर खाएगा तो भी वापस माटी में, वेस्ट हो गया तो भी वापस माटी में, किसी ने नहीं खाया तो भी वो अंततः माटी में वापस चला जाएगा। तो वही उसका उद्गम है जहां से आता है, और वही उसका अंतिम शेल्टर है, अंत में वो वहीं जाता है। तो उस तरह से ये सारा भौतिक संसार महातत्व से आता है, इंक्लूडिंग ये माटी और इंक्लूडिंग हम। और जब ये संसार समाप्त हो जाता है तो भी वापस, जैसे कि हमने बचपन से ही सबने सुना है कि एक दिन शिव जी अपनी तीसरी आंख खोलेंगे, क्या होगा? प्रलय हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो छोटी मोटी प्रलय भी हो सकती है, लेकिन जो महाप्रलय, सब कुछ खत्म तो हो जाएगा लेकिन जाएगा कहां? कोई चीज जो है वो खत्म कैसे हो सकती है? जैसे हम कहें कि ये जो करताल थी ये खत्म हो गई या घिस गई, एवेपोरेट हो गई, कुछ भी हो गया, किसी भी तरीके से ये जब भी खत्म होगी माटी में ही जाएगी। उस तरह से ये पूरा संसार जब भी खत्म होगा वो महातत्व में वापस विलीन हो जाएगा। ये एक एक्सप्लेनेशन। दूसरी एक्सप्लेनेशन चलो प्रभुपाद 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में दे रहे हैं। परमात्मा या भगवान ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्त्रों के प्रकाश स्रोत है। वैदिक साहित्य से हमें यह पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। सबने ब्रह्म ज्योति के बारे में सुना है। ब्रह्म ज्योति क्या चीज है? भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश। कहां तक जाता है वो? सभी जगह जाता है, हमें दिखाई दे रहा है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है आपको?
सूर्य के अंदर भी वही है,
सूर्य के अंदर है, फिर हमें सूर्य की जरूरत क्या है? अगर जो इस संसार तक हम तक वो ब्रह्म ज्योति पहुंच रही है तो फिर हमें सूर्य की क्या आवश्यकता है? सूर्य की तो रात भी होती है, ब्रह्म ज्योति की तो रात नहीं हो सकती। तो वो ब्रह्म ज्योति हमने सब जगह देखा, पढ़ा, सुना, सब कुछ है कि सर्वव्याप्त, लेकिन हमें तो नहीं मिलती, हमें तो नहीं दिखती। तो ग्रंथ क्या बताते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? इस भौतिक संसार से। इसका मतलब वो इस भौतिक संसार में नहीं आती। जहां पे ब्रह्म ज्योति है वो भौतिक संसार नहीं है, भौतिक संसार में ब्रह्म ज्योति नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि इतनी दूर तक पहुंच जाए, नहीं, इसलिए नहीं। यहां पे लिखा है क्यों नहीं आती कि भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्तत्व या भौतिक तत्वों से ढका रहता। इसका मतलब महत्तत्व जो है वो इस संसार में ब्रह्म ज्योति को आने से रोकता है। इसका मतलब महत्व क्या है? एक आवरण है जो इस भौतिक संसार के चारों तरफ है, जो इस भौतिक संसार को आध्यात्मिक जगत से दूर रखता। तो जैसे हम कहते हैं कि हमें आध्यात्मिक जगत या भगवान के पास जाने के लिए ऊपर जाना होगा, उसके लिए फिजिकली ऊपर जाने से हम वहां कभी भी नहीं पहुंचे, क्योंकि महत्त्व हमें कभी जाने नहीं देगा। लेकिन कब पहुंचेंगे? जब भगवान की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा से हमें यहां से निकाल के वहां, वो कृपा हमें वहां पहुंचा सकती है। कोई भी आप हमारा पौरुष यहां से निकल के जा नहीं सकता। और ब्रह्म ज्योति हमें इसलिए प्राप्त नहीं होती क्योंकि महत्त्व ने हमें ढका हुआ है। तो इसका मतलब महत्त्व क्या है? वो एक आवरण है जो इस भौतिक संसार को आध्यात्मिक संसार से अलग करता। अब महत्त्व सबको समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया तो अगर किसी को, तो 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक में श्रील प्रभुपाद फिर से बता रहे हैं यह संसार की व्याख्या। ओ पहले मैं आपको इसका ये पढ़ दूं अनुवाद। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत होती है और इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। यहां पे यही बात लिखी हुई है जो इस तात्पर्य में लिखी हुई है। ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तुओं के जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह शरीर या क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महातत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। समस्त ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण, जहां से ये सारा भौतिक जगत निकल के आया, ये सब पहाड़, नदियां, धरती, जो कुछ भी इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो सब कुछ महत्त्व से आया। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो दृश्य संसार है, जो कुछ हमें दिखता है, वो सब कहां से आता है? लगभग सभी कुछ माटी से आता है। ये कसाल कहां से आई? इसका जो मेटल है वो धरती में से ही आया, तो सब कुछ धरती से आया। तो जैसे धरती सब चीज का उद्गम है, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड का उद्गम महत्त्व है, जहां से महत्त्व में से ये ब्रह्मांड आया और वापस ये ब्रह्मांड संहार के बाद महत्त्व में ही विलीन हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि महत्त्व के को तीन गुणों के क्षोभ से भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। तीन गुण सत्व, रजस और तमस के क्षोभ से, और उससे मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों नियामक भी तत्व उत्पन्न होते हैं। ये सब तो जैसे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक मशीन एक के बाद एक प्रोड्यूस करती है, ऐसे ही ये महातत्व एक के बाद एक ये सब चीज प्रोड्यूस करता है। जब वो उसकी प्रोडक्शन खत्म हो जाती है तो आगे की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अगर हम इस संसार में कुछ भी नहीं करें, सब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, ये संसार रुकेगा नहीं। हम सब सारे मनुष्य हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, ये संसार रुकने वाला नहीं। अपने आप घास उगेगी, अपने आप जाके जानवर उसको खाएंगे, अपने आप जाके वो हर चीज का जो साइकिल है वो अपने आप भी चलेगा, या हमारे चलाने से भी चलेगा। हमारे एक थोड़ी सी जमीन है, एक गऊ है, तो जो घास उग रही है हमारी गऊ खा रही है, वो दूध भी दे रही है, नहीं भी दे रही तो गोबर तो दे ही रही है। वो गोबर से ईंधन होता है जिससे हमारा चूल्हा जलता है, और उस चूल्हे में जलाने के बाद वो गोबर खत्म हो जाता है, नहीं वो फिर राख हो जाती है, उससे फिर हमारे बर्तन बचते हैं, फिर वो राख फिर उसी माटी में चली जाएगी, फिर उसी से और घास होगी, फिर हमारी गैया खाएगी, और फिर वही साइकिल दोबारा से हो जाएगा। अब अगर हम बीच में हैं तो भी होगा, और अगर हम बीच में नहीं भी हैं वो तो भी होगा। बीच में हमारा क्या काम है, वो आग लगाने का, वो हम नहीं लगाएंगे तो प्रकृति किसी ना किसी तरीके से आग लगाई देगी, और वो फिर वापस सब चीज धरती में वापस आ जाए। तो अगर हम हैं तो हम अपने उपभोग के लिए ये भगवान की दी हुई सब चीजों को उपभोग कर रहे हैं, अपने इंद्रियों के लिए या अपने पालन पोषण के लिए, लेकिन सब कुछ चलाने वाले भगवान या उनका सिस्टम जिससे सब कुछ अपने आप चलता है। हम चलाएंगे तो भी ठीक है, नहीं भी चलाएंगे तो भी ठीक है, नदी फिर भी बहेगी, बरसात फिर भी आएगी, सब कुछ होगा बिना हमारे कुछ करे, और हम समझते हैं कि इस संसार को हम चला रहे हैं। कोई मानेगा नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के हृदय में यही है कि हमारे चलाने से ही संसार चल रहा है, वास्तव में नहीं चल रहा। किसी को पूछो कि आपके चलाने से चल रहा है, मानेगा नहीं, लेकिन फिर भी अंतर हृदय में यही भावना होती है कि हमारे चलाने से तो सब कुछ चल रहा है। तो जब इस तरह के प्रॉस्पेक्ट श्रीमद् भागवतम हमें इस तरीके का आस्पेक्ट या प्रोस्पेक्टिव हमें सीधा दिखाता है श्रीमद् भागवतम, तो हमारी आंख खुलती है कि हाँ वास्तव में हमारे होने नहीं होने से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम जो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट इतना महत्वपूर्ण समझते हैं वो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है भी। कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं हम, एक बाल के नोक पे हमारे जैसे 10,000 बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं कि नहीं, कितना महत्व है हमारा, एक बाल की नोक पे हमारे जैसे 10,000 बैठ जाएंगे, कुछ खास महत्व नहीं है। लेकिन हमारा अहंकार हमें ये सोचने को मजबूर करता है कि हाँ मैं तो बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। कोई प्रश्न?
भागवतम में कहीं मैंने पढ़ा तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे था, जैसे आप नए तत्व की बात कर रहे थे तो उसमें ऐसा भी वर्णन आया है कि प्रलय के बाद समझ जी एक छोटी एक ये भौतिक जगत के सभी जीव हैं वो इसमें सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो क्लाउड, जैसे क्लाउड अगर हम आजकल बहुत कॉमन एक क्लाउड जो है स्टोरेज के लिए भी यूज हो रहा है, कि ये भी एक तरह का स्टोरेज है जहाँ पे समस्त जीव अपने
सब लोग ध्यान से सुनो बातें नहीं,
अपने सभी प्रकार के जो सूक्ष्म कर्मों का हिसाब किताब लेकर के वहाँ पे सुप्त अवस्था।
तो आप प्रश्न पूछ रहे हो कि कमेंट कर रहे हैं?
एक तो ये है, दूसरा ये कि एक जैसे अभी डिस्कशन हो रहा था तो सब कुछ कह रहे थे चलता रहेगा, चलता रहेगा तो वो किस लिए है कि गुणों के कारण, जैसे वर्णन आया
जो चलता रहेगा हमारे बिना, क्योंकि भगवान ने संसार एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह बनाया है जिसमें हमारा होना ना होना हमारे लिए ही महत्वपूर्ण है और किसी के लिए। ये संसार भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये अपने आप ही अपने आप को चलाता। पहले घास बनाई, उसको खाने के लिए कीट पतंगे बनाए, उनको खाने के लिए चिड़िया बनाई, उनको खाने के लिए दुनिया भर की चीज बना के ऑन द टॉप हमें बैठा दी, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस थे। लेकिन अगर हम वहां टॉप पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, ये संसार फिर भी सारा चलने वाला है। तो ये एक तरह से हमारी हमारे अहंकार को ठोकर है कि तेरे होने नहीं होने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, ये संसार वैसे जैसा चल रहा है वैसे ही चले, हम हैं चाहे हम नहीं है, चाहे हम अपने आप को कितना भी महत्वपूर्ण समझे, महत्व कुछ खास है नहीं। तो यहां ये बताया जा रहा है कि धरा देवी बता रही है कि आपने ये संसार का ऐसे निर्माण किया है, और उसको आगे श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये संसार एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह है जिसका बटन दबाने से वो सब कार्य कर लेती है। उसी तरह से भगवान ने इसका बटन दबाया हुआ है और ये संसार अपने आप से चलता है। वास्तव में जिस तरीके से ये चलता है उसके साथ में हम कुछ खास छेड़खानी भी कर नहीं सकते। लेकिन कोशिश करते हैं
छेड़खानी। बटन जो है जैसे द्रव्य क्रिया कारण चेतना भी, जैसे प्रभुपाद ने एक बार दोबारा से आप तात्पर्य को
अगर जो आप प्रलय के बारे में आपने और जगह पढ़ा है तो मैं आपको पहले बता दूं कि कई तरीके की प्रलय होती है। ब्रह्मा के दिन का अंत होने के बाद एक प्रलय होती है, हर दिन खत्म होने के बाद प्रलय हो जाती
है,
आंशिक प्रलय हर मनवंतर के बाद। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 प्रलय वो हो गए, फिर मेन प्रलय होगी जब ब्रह्मा जी 12 घंटे के लिए सोने चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये जिस समय की बात कर रहा है महत्व में जाके मिल जाने की, जब ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाएगी 100 साल और ये ब्रह्मांड खत्म, तब ये जाके महत्व मिलेगा। तो वो फाइनल प्रलय है, महाप्रलय।
वो बात ठीक है, लेकिन जो ऑटोमेटिक मशीन वाली जो बात आ रही है वो तीन गुणों के कारण होगा,
तीन गुणों के कारण। अच्छा, इसमें ऐसा बताया है कि तीन गुणों के क्षोभ से भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। उसके आगे बताया है मन अहंकार तथा इंद्रियों के नियामक भी तभी उत्पन्न होते हैं। तो पहले मात तत्व की उत्पत्ति हो गई, फिर तीन गुणों से और भौतिक तत्वों की उत्पत्ति उसी महत्तत्व में से हो रही, तो अगेन उसमें ह्यूमन इंट्रैक्शन की, मनुष्यों को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप से हो रहा है।
जो जिस गुण में के अगर गुण के अनुसार वो एक्टिविटी होगा,
हाँ वो उस तरीके से गुण हमें अप्लाई करते हैं, फिर ये गुण प्रकृति को भी अप्लाई करते हैं। तो प्रकृति में उन तीन गुणों के हिसाब से, जैसे कि फल सब्जी की जो होती हैं वो सत्व गुण में भी होती हैं, तमस में भी होती हैं, रजस में भी। तो वो इंग्लिश में चलो प्रभुपाद कहते हैं वेरिएगेटेडनेस क्रिएट करता है। वेरिएगेटेडनेस मतलब अलग 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 चीज, बहुत सारी चीजों को हम सब्जी कहते हैं लेकिन वो सब अलग 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 सब्जी, बहुत सारी चीजों को हम फल कहते हैं लेकिन उनमें डिफरेंस है, तो वैरायटी। तो वो वैरायटी जो है वो किसी गुण के अधिकता और किसी गुण के न्यूनता होने की वजह से वो अलग 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 वैरायटी। ऐसे ही जीव 84 लाख योनिया, वो भी वेरिएगेटेडनेस, उसमें जो वैरायटी वो ये तीन गुणों की अधिकता न्यूनता एडजस्ट करके है। वैसे हम में से भी कोई पूरी तरह से तमस में या रजस में या सत्व में नहीं है, हमारे अंदर भी भौतिक गुण मिक्स्ड है, लेकिन वैष्णव फिलॉसफी है कि हमें ये तीन गुणों से ऊपर उठना, तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में जाना। शुद्ध सत्व का मेंशन नहीं है यहां क्योंकि वो केवल भक्तों के समझ में आने वाली चीज, शुद्ध सत्व में केवल वैष्णव भक्त उठ सकते। कैसे? सब कुछ भगवान को समझ, 13 तुझको अर्पण, कहना आसान है करना इतना आसान है। सब कहते हैं 13 तुझको अर्पण करना, लेकिन करना इतना आसान नहीं होता जितना आसान कहना हो। ठीक है, और कोई प्रश्न? ऑल राइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद
की जय।
Thank you.